नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। ये एफआईआर हाल में कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपीएसी के परिसर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी के संबंध में दर्ज की गई थी। न्यायालय ने कहा है कि याचिकाओं के माध्यम से केंद्रीय जांच में राज्य एजेंसियों के कथित हस्तक्षेप के गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है जिनमें पिछले सप्ताह चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कहा है कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में आरोप लगाया कि सुश्री ममता बनर्जी अराजकता और अव्यवस्था का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ये दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं आज लोकतंत्र को स्थिरता, गति तथा व्यापकता प्रदान करती हैं। वे नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचना और सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। भारत में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
इस बीच प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक लेख साझा किया है जिसमें बताया गया है कि भारत राष्ट्रमंडल देशों के साथ अपनी सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझा करने के लिए तैयार है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी देश भर में सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अपने 70वें जन्मदिन पर लखनऊ में सुश्री मायावती ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति वैसी ही है जैसी पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के समय थी। आज 78वां सेना दिवस है। इस अवसर पर जयपुर के जगतपुरा में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों के परिवारों को सेना मेडल दिए। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लियेन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दोनों नेता 25 जनवरी से 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान दोनों नेता 27 जनवरी को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ईरान की मौजूदा स्थिति पर बैठक होगी। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों और अधिकारियों की हिंसक कार्रवाई के बाद से तनाव अब भी बना हुआ है। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने जापान के केंता निशिमोतो को हराया। एक दिवसीय अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले में भारत ने अमरीका को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।